also came. Celebrate with joy and happiness.
Oh, dekho kaun aaya, saath Baba bhi aaya. देखो कौन आया साथ बाबा भी आया शिवा एंड बाबा टुगेदर
यू आर द ओशन ऑफ लव यू आर द ओशन ऑफ लव
शांति ओम शांति ओम शांति। तो जानकी दादी बोलते थे कि तीन बार ओम शांति बोलने से, पहले ओम शांति बोलने से आत्मा में लाइट आ जाती है, और दूसरी ओम शांति बोलने से आत्मा ब्राइट माना शक्तिशाली बाप की याद आ जाती है, और तीसरी लाइट ड्रामा बोलने से आत्मा लाइट माइट और तीसरा ब्राइट माना प्रकाश शक्तिशाली हो जाती है। तो पहले तो अपन 2 मिनट बाबा के गुणगान करेंगे, फिर क्लास चालू करेंगे। तो पहले तो बाबा की सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि बाबा ने सबसे पहला ये ज्ञान दिया कि बच्चे आप आत्मा हो। जैसे आत्मा में मन बुद्धि और संस्कार तीनों चीज होती है। जैसे अपन द्वापर से देखा जाए तो जैसे सतयुग त्रेता में अपन आत्मा की स्टेज में थे, तो जैसे अपन अपने आप को आत्मा समझ के भूल गए तो शरीर कॉन्शियस देहमान में आ गए, फिर बाद में नीचे नीचे जैसे जैसे उतरते गए तो अपन एक ये देखा जाता है कि जैसे अपना शरीर पहले अपन ने मैं आत्मा हूँ बोल के भूल गए, उसके बाद अपन पवित्रता जो है विकारों के पीछे 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 भागने लगे। तो बाबा ने जैसे अपन सत्व रजो और तमो में जैसे स्टेज आए, उसका मेन कारण ही है अपने आप को अपन आत्मा को आत्मा स्मृति भूल जाना। तो बाबा ने पहले आते ही ये बता दिया कि बच्चे आप आत्मा हो, तो फिर वापस उसी स्टेज में लेके गए बाबा। तो फिर दूसरी बात यह है कि बाबा की सबसे अच्छी, जैसे बाबा कहाँ कहाँ पकड़ के कैसे कैसे बच्चों को लेके आता है, तो ये कार्य कोई दूसरा और नहीं कर सकता है। जैसे आप यहाँ भी देखें तो सब अलग अलग है, जैसे भाई जी ने ABCD से क्लास कर रहे थे वो यूनिक है, जैसा सब बच्चे अपने आप में अलग है। तो ये काम सिर्फ बाबा ही कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। बाकी मम्मा और बाबा की जो विशेषता है अपन क्लास में उससे रिलेटेड डिस्कशन में बीच बीच में डिस्कशन करेंगे। तो जो टॉपिक दिया है कि आई लव बाबा की मर्यादाएं, तो मर्यादा के बारे में पहले से बात करते कि जैसे लौकिक ब्राह्मण होते हैं ना, तो उनकी पहली मर्यादा होती है कि जनेऊ और उनका जो चोटी होती है और जो जनेऊ होता है उनकी मर्यादा, मतलब उनकी जो पहचान होती है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में अपना चोटी माना पवित्रता है, तो पवित्रता और जनेऊ माना ही अपनी मर्यादाएं है। तो अपन जैसे आप लोग, बहुत सारे लोगों को मर्यादा है तो सब पता ही है, तो सब मर्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो अपन फोकस करेंगे थोड़े चीज़ों पे ताकि उनसे दिन भर अपनी मर्यादा अपने आप मेंटेन होती रहेगी। तो अपने को मर्यादा के लिस्ट में ज़्यादा मेन में जैसा लौकिक में अलौकिक में कुछ मर्यादा जरूरी है, उस मर्यादा के बीच बीच में अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहला तो है कि जैसे अपन लेफ्ट साइड में जैसा लेते, इन बातों पे अपन फोकस करते रहे तो मर्यादा स्वतः ही अपने आप दिनचर्या में चलती रहेगी। तो सबसे पहला है कि संपूर्ण समर्पण। जैसे अपन मम्मा के बारे में सुनते हैं कि मम्मा ने आते ही संपूर्ण समर्पण किया, और बाबा को भी जैसे पता चला, बाबा ने बताया पहले बाबा के शरीर में प्रवेश करके, तो संपूर्ण समर्पण जिसने किया है मन और बुद्धि द्वारा, जैसे बाबा का ज्ञान समझ में आया, तो संपूर्ण समर्पण माना ही अपने मन तन बुद्धि संबंध और संपर्क और अपना समय भी सब अर्पण कर देना, उसी को अपन संपूर्ण समर्पण कह देते हैं। तो तन और धन अर्पण करना तो थोड़ा सा ईजी है, और मन को अर्पण जो करता है, मन को अर्पण करना माना श्रीमत के बिना एक भी संकल्प नहीं आना है मन में, श्रीमत के बिना मन अपन यूज नहीं कर सकते, मन के सारे संकल्प और विकल्प खत्म हो जाए, श्रीमत अनुसार ही चले। तो ऐसे देखा जाए तो मम्मा ने और बाबा ने जो भी किया संपूर्ण समर्पण किया। तो अपन ऐसे देखेंगे तो दिन में आपको बीच बीच में जहाँ माया आती है, मन का जो भी गड़बड़ होता है, तो उसमें ही देखा गया कि मन और बुद्धि में आपने कहाँ कहाँ अभी तक समर्पण नहीं किया, तो उसे वही एक माया का गेट बन जाता है। तो अपने को पहले तो ये तो चेक करना है कि जैसा दिन दिन में अपना कहाँ कुछ अवज्ञा हो रही है श्रीमत की, तो उसी उसमें अभी तक अपन ने मन बुद्धि से संपूर्ण समर्पण नहीं किया है, तो अपने को चेक करके पूरा तो संपूर्ण समर्पण करना है। और दूसरा जो मन मनाभव का मंत्र है, मन मनाभव का मंत्र ऐसा तो बहुत गहराई है, मन मनाभव माना ही मन को अपन बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। उसमें जैसे अपन कोई भी चीज में है तो मन जिसके पीछे लग जाता है तो बुद्धि भी उसी तरफ चली जाती है, और मन बुद्धि जिस दिशा में चलने जाते हैं तो संस्कार बन जाते हैं। तो मन को आपने अगर पूरा मनमनाभव बाबा में लगा दिया तो बुद्धि भी आपकी उसी तरफ लगेगी और आपके संस्कार भी वैसे बनते जाएंगे। और मन मनाभव माना बाबा के कर्म, बाबा के गुण और बाबा के संबंध, इसके सिवाय और दूसरा कुछ मन में चले ही नहीं मन और बुद्धि में। और बुद्धि को अर्पण करना माना बस बुद्धि एक टक और एक रस रहे, एक टक माना बस बाबा को ये देखते रहे, एक रस माना बाबा के रस में ही बुद्धि खोई हुई रहे। तो जब अपन मन और बुद्धि का अर्पण करते हैं तो अपन श्रीमत और मर्यादा अपने आप फॉलो होती है, अपने को ज़्यादा मर्यादा की लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि दिन में कोई श्रीमत और मर्यादा उल्लंघन हो रही है, तो अपने को पहला तो मन बुद्धि में जहाँ भी समर्पण नहीं किया उसको समर्पण कर देना है बाबा को, तो मर्यादा अपने आप फॉलो होती रहेगी। और दूसरा जैसे अपन पांडव भवन के गेट में जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसमें पहला क्या लिखा है, पवित्र भव राजयोगी भव, योगी ने राजयोगी भव लिखा है, राजयोगी बनो माना पवित्र भव राजयोगी भव लिखा है दोनों। तो पवित्रता का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्रता माना जो भी अपन ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क संबंध संपर्क में आते हैं उनके प्रति मन दृष्टि वृत्ति और वाइब्रेशन में संपूर्ण संबंध निभाना, यही अपने को अपन संपूर्ण पवित्रता की एक छोटी सी इसमें डेफिनेशन लाए तो यही है। और पवित्रता माना जहां अपने को कि स्वप्न में भी श्रीमत की आज्ञा के बिना मन में कोई संकल्प नहीं चले, विकल्प नहीं चले। तो अपन जैसे जैसे पवित्रता, पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ देन है। पवित्रता ही अपने 21 जन्मों का फाउंडेशन है। माना जैसा फाउंडेशन अगर हिल गया तो अपन उसके ऊपर बिल्डिंग बना नहीं सकते। तो पवित्रता में हिलने, जहां पवित्रता हिल गई तो बिल्डिंग पूरा पक्की नहीं बनेगी। तो पहला तो पवित्रता का गुण अपने में धारण करना है, और दूसरा जो अपन राजयोगी, और पवित्रता ही अपना जो सतयुग में है, अपने को फर्स्ट जन्म में आने का अधिकारी है, पवित्र भव योगी भव। तो इसमें जो संपूर्ण होंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ पहले पवित्र मतना सतयुग में राजभाग भोगने के अधिकारी होंगे और उनको ही भाग्य प्राप्त होगा। तो दूसरा है कि जैसा राजयोगी बनो, तो राजयोगी बनो मतलब अपने को जैसे अपन अमृत वेला हो, जैसे बाबा के याद में बैठते तो अपने को एक बार ये भी याद दिलाना है कि मैं राजयोगी आत्मा हूँ, योगी आत्मा नहीं हूँ। तो राजयोगी माना ही जैसे कल भी सर ने डिस्कस किया कि मन, बुद्धि और संस्कार तीनों के मालिक। तो जैसे अपन, और राजयोगी माना अपने अंदर जो भी राज्य चल रहा है, सूक्ष्म शक्तियाँ, कर्म इंद्रिया, सबके मालिक अपने अनुसार चला सके। तो इसमें जब अपन गहराई से देखते हैं कि सबसे इसमें राजा को जो हिलाने का काम करता है वो मन ही करता है, क्यों? अपन द्वापर से उसको राज्य दे चुके हैं मन को, तो बार बार वो जैसे राजा से राज्य अधिकार छीनने की कोशिश करते रहता है। जैसे आपने देखा ना, अभी भी कहीं राज्यों में चल रहा है, मतलब एक सरकार है, एक सरकार पूरा बहुमत नहीं मिले, बट वो दो तीन लोग पार्टियों को लेकर सरकार बना चुकी है, और जो बहुमत में है वो बाहर बैठे है। तो मन भी ऐसे है कि अपना अधिकार सब बुद्धि और संस्कार इनको साथ में ले लेता है और राजा को सीट से हटाने की कोशिश करता है, क्यों? मतलब अपन उसको अधिकार दे, इतने दिन मन के माना उसी के वश चलते थे, जैसे द्वापर से देखा जाए तो। तो बाबा ने पहला ही मंत्र दिया कि बच्चे पवित्र भव राजयोगी भव। तो अपने के सुबह जैसा अपन अमृत वेले में एक बार इसको स्मृति में लाना है, और दिन में जैसे एक एक घंटा है तो बीच में अपने को चेक करते रहना है कि, और बीच में क्या, जब भी आपका राज्य हिलता है तो आपको देखते रहना है कि, और जहाँ मन चला जाता है बुद्धि भी उसके पीछे चली जाती है। जैसे आपको कोई चीज याद आ गई, मन चला गया उसको पीछे, फिर बुद्धि उसकी फोटो आपको याद आएगी जो पिक्चर बना हुआ है। फिर जैसे जैसे मन बुद्धि जिस तरफ गई, ज्यादा देर उसी तरफ चलने लगी तो आपके उसे वही उसी से संस्कार बन जाते हैं। और अब ये तो हो गया, तो मन को अगर पूरा स्वराज अधिकारी बनना है तो अपने को कई सारे दिनचर्या में कई सारे चीजों पे फोकस करना है। जैसा पहला तो ये है कि बाबा जो बोलते रहते हैं कि मन का टाइम टेबल बनाओ, जैसे अमृत वेला ही अपन कोई चीज का, नहीं तो कोई पुरुषार्थ का जैसा मेन एम रखते हैं कि इस दिन में पुरुषार्थ करना है, तो मन का अपने को टाइम टेबल बनाना है। अगर आप अमृत वेला भी पूरे दिन का अगर 12 घंटे का चलो मान बना नहीं सके, तो अपने को जैसा एक एक घंटे में अपन एक मिनट बाबा की याद में रहते, तो उसके बाद अपने को एक जैसा एक कोई सब्जेक्ट देना है कि हर बार एक कोई सामान लिया एक घंटे के लिए कि मैं जैसा जगत माता हूँ। जैसे आप एक घंटा उस सामान में रहे तो आपके आगे कुछ भी होगा तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे। और एक घंटा जैसा आपने ले लिया कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो एक घंटा उसके बारे में करना है। तो हर एक घंटा अपने को एक घंटे बीच में रोके एक एक घंटा अपने को कुछ तो देते रहना है, मैं इनका टाइम टेबल बनाते रहना है। जैसे यहाँ पे बड़े लोग जो पीएम वगैरह रहते तो उनके साथ ही सब टाइम टेबल बना के रहते, तो इतना बिजी रहते हैं कि उनको मतलब व्यर्थ, जैसा जैसा अपन व्यर्थ से बचने का ये भी साधन है कि मुख्य कि अपने मन को भी इतना बिजी कर दो कि व्यर्थ के लिए अपना समय ही नहीं बचे। और आप जैसा सामान हो गया, और इसके बचने के लिए अपन दूसरा ये भी कर सकते हैं, जैसे बाबा की अव्यक्त मुरली है, इतने सारे मुरली है बाबा की, जैसे दिन में सुबह अपने साकार मुरली सुन ली तो दिन में 12 बजे से जैसे अपन ने अव्यक्त मुरली पढ़ लिया, जैसे अपन ने टारगेट कर लिया कि एक मुरली पढ़ना है, तो जैसा आपको एक बड़ी मुरली है, एक टाइम में आपको पूरा आप उसको समा भी नहीं सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते कि एक एक घंटा आपको एक चार लाइन्स पढ़ना है और चार लाइन्स को एक घंटे में आपको फॉलो करना है। और जैसा बुद्धि बुद्धि के लिए भोजन है कि बुद्धि के लिए अपन जो भी है ज्ञान पढ़ते रहे, एक घंटा दो घंटा, जैसे अपने दादिया हो गए मम्मा हो गए, सब बीच बीच में पढ़ते रहते, तो अपने बुद्धि का भोजन ही है जो बाप का ज्ञान है, अपने को बीच बीच में पढ़ते रहना है। तो जैसा आवेक मुरली को आप जैसे 12 बजे से टारगेट बना लिए, तो दिन भर अपन बीच में एक घंटा दो घंटे का उसको डिवाइड करके, जैसे आपको रात तक वो मुरली फिनिश करनी है और उसका कितना हो सके उतना स्वरूप भी बनना है। ऐसा नहीं कि अपन 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ लिया, फिर दिन में 4 बजे आते सोकर उठ गए और फिर वो भूल गए हो। तो अपने को ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको एक घंटा दो घंटा डिवाइड करके उसका बीच में स्वरूप बनने की कोशिश करना है। तो ये हो गया। और दूसरा ये भी है कि जैसा मन को अगर व्यर्थ से बचाना है, तो एक तो अपन टाइम टेबल कर दिया, और अपने को व्यर्थ से बचना है। व्यर्थ मन में जब आता है, यूजुअली जब आता है, अपन पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत में चले जाते हैं। इसके लिए अपने को स्वदर्शन करना है। और पर मत से बचने के लिए सबसे अपने को ये है कि अपने को गुणग्राही बनना है। जैसा दिन में अपन कई बार आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, जैसा कई बार कि आपकी बुद्धि भारी हो गई, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो एक घंटा आप एक भी कर सकते कि गुणग्राही बनने का अभ्यास है। तो जैसे कोई नोट डायरी ले लिया, जैसे आप पांडव भवन में हो, जैसे आप खाना बनाने की सेवा कर रहे हो, आपके सामने जो साथी रहते हैं 1-10 जन बैठे हैं, तो उनका गुण के बारे में लिखते जाना है। जैसे 4-5 गुण लिख लिया कि ये भाई की ये गुण है, ये भाई की ये गुण है, फिर जैसे आपके मन में कोई संस्कार बने हुए होते, संस्कार माना है जैसा भूकंप जैसे होते, जैसा भूकंप अचानक आता है ना, संस्कार माना जैसा किसी को कोई व्यक्ति प्रकट होता है, उस टाइम आपको रिएक्ट करने का टाइम नहीं रहता है। जैसा कोई समझो कोई काम के वश है अभी भी, उसमें अगर काम की भावना है, तो जैसा ही कुछ देखेगा वो सोचेगा वो अचानक आएगा, उस टाइम वो रिएक्ट नहीं पर मतलब रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं, वो आत्मा को फिर हिला देगा। फिर इस किसी में क्रोध करने की अभी तक भी विकार बचा हुआ है, तो वो जैसे वो सिचुएशन आएगी क्रोध की, वो क्रोध कर देगा, मतलब उसको टाइम नहीं रहेगा। तो अपने को एक व्यस्त से बचने से ये भी है कि वे अपन जिसके आसपास रहते जिसके ये भी रहते उसके अपने को सबके गुणग्राही बनने के लिए गुण थोड़े दिन अपन ये भी कर सकते कि प्रैक्टिस करते रहे कि सबके गुण 1-4-5 गुण 2-3 सब में ऐसे गुण की विशेषता ही है जब बाबा के बच्चे बने हैं, तो आप ये कर सकते कि गुणग्राही बने। और दूसरा ये है अपने को व्यर्थ से बचने लिए कि अब जैसे बाबा बोलते कि अब समान माना ही बाबा बोलते हैं कि अपने को निमित्त समझकर निर्माण करना ही समान है। तो जैसे अपन ने समान लिया जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, जैसे अपन उसी स्टेज में रहे 1/2 घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसके साथ निमित्त और निर्माण नहीं, तो 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा अभिमान भी आ सकता है कि मैं बहुत सर्वशक्तिवान हूँ, दूसरे से भी सर्वशक्तिमान हूँ। तो अपने को ये है कि जैसा उसमें निमित्त और निर्माण बनना है, निमित्त बनने से अपन निर्माण बन सकेंगे। अब निमित्त का ये भी एडवांटेज क्या है, जैसे आप निमित्त बनेंगे तो निमित्त बनने से और आप न्यारे और प्यारे भी बन सकते हैं, और निमित्त बनने से आप जो महानता का जो फल खा सकते खाना है जो बाबा के ज्ञान में, तो आपको निमित्त बनना जरूरी है, नहीं तो देह अभिमान में आ जाते बीच में। न्यारा प्यारा और महानता के लिए निमित्तता बहुत जरूरी है। तो अपने को समान साथ साथ में निमित्त और निर्माण ये चीजें अपने को साथ साथ में करनी है, समान के साथ में। और दूसरा ये हो गया। और जैसे अपन दिनचर्या की बात करें तो अपन ये कर सकते हैं, जैसे अपन सुबह अमृत वेला जग गए, बाबा तो बोलते कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो अपने दिनचर्या अनुसार जैसे आप जग गए तो पहले उठते ही अपने को बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, बाप दादा को। और दूसरा ये करना है कि जैसे अभी आप अव्यक्तवाणी हो, कोई भी एक 3-4 लाइन तो आपको पढ़ना है उठते, जैसा बुद्धि का आपने सुबह कोई भोजन दे दिया। जैसा हम तो अभी मार्च में जब लास्ट टाइम आए थे तो ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छी किताब लगी थी, सुबह उससे अपन 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं कुछ तो, और दिन में भी जैसा ही कुछ बीच में गड़बड़ लगते है स्वराज में तो उसके 4 पॉइंट्स पढ़ लेते, मतलब बीच बीच में 1-2 घंटे के टारगेट हमने तो बना रखा है कि उस किताब से जैसे माना उस किताब में अव्यक्त बाप दादा ने ब्रह्मा बाबा के क्या ब्रह्मा बाबा के विशेष गुणगान किए, जैसे 25 गुणों के बारे में विशेष गुणगान किए। किताब बहुत छोटी सी है, वो 120 पेजों की है, लेकिन बहुत अच्छे है, क्यों सबका अपना टारगेट तो वहीं बनना है ना। तो जैसे अपन एक महीना ही एक मास में ही सब गुणों को किए तो अपन सब उसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो अपने को हर दिन उसी में करते रहना है ताकि अपने उसी का अपन स्वरूप बन सके। और दूसरा जैसे अपन अमृत वेला उठे तो उठने से जैसे सर ने भी बताया कि अपने को नहा कर अमृत वेले के लिए आना है, तो सबसे तो अपन ठंडे पानी से नहाना तो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर ठंडा नहीं है तो जैसा स्पैनिश शावर बोला है कि गर्म ठंडा, क्यों जैसे अपन देखिए कि सुबह उठे कई बार अपन नींद में भी है बाबा को ढंग से गुड मॉर्निंग नहीं कर पाए, क्यों नींद के नशे में। अभी जैसे अपन ठंडे पानी से नहाने लगते तब तो शरीर में ऐसी झुंझन हो जाती है कि ब्राह्मण नहीं उसी समय ब्राह्मण बच्चे बाप को याद करेंगे, क्यों बाप के सिवाय किसी और को तो याद नहीं करेंगे। और जैसा अपने को अमृत वेला ये देखना है कि अपने को ये विशेष जैसा एक दिन में एक गुण और शक्ति का यूज करना है, जैसे अव्यक्त वाणी में तो बाबा ने बोला है कि वो शक्ति आप में संपूर्ण स्वरूप बनने के लिए मिनिमम कोई भी एक जैसे अपने अष्ट शक्तियां हैं तो एक एक शक्ति को अपने को 2003 के वाणी में बोला है बाबा ने कि मिनिमम 15 से 20 दिन यूज करना है। जैसे समझ लीजिए सहन करने की शक्ति है, अपने में सहन करने की शक्ति कम है। अब सहन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, एक तो समेटना और एक तो समा लेना। मतलब अब देखे जैसा सागर में सभी नदी तालाब का पानी आ जाता है, लेकिन जैसे ही सागर में चला जाता है वो समा लेता है, उसी सागर के स्वरूप बन जाता है। तो इसी तरह अपने को भी अगर सहन करने की शक्ति चाहिए तो समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। तो अपन तो बेहद के बाप दादा जो अपना सर्वशक्ति में सागर है तो उनके बच्चे है, तो अपने में समाने की शक्ति जरूरी है। दूसरा है समेटने की, जैसे जैसे कोई भी बात हो तो उसको ऐसे लगे कि कोई बात हुई नहीं थी। तो इसका अपन 15 से 20 दिन करना है, तो सुबह अपने को एक बार स्मृति में लाना है कि सहन शक्ति मेरे को बनना ही है, और इसका बीच बीच में अपने को प्रयोग करके देखना है उस दिन में। और दूसरा कोई भी एक जैसा अमृत वेला आपको एक कोई गुण लेना है, जैसे अपने को पहले तो 7 गुण में संपूर्ण बनना है, उसके बाद तो अपने पास जो पांडव भवन में लिस्ट पड़ी बहुत सारे गुणों की, आप उसको भी डेली एक एक दिन में एक एक गुण यूज कर सकते हैं। गुण को यूज करना माना उसका स्वरूप बनना, अपने से जितना हो सके उतना उसका स्वरूप बनना। तो अमृत वेला जैसे अपन ने ले लिया कि मैं पवित्र परम पवित्र आत्मा हूं, तो पहले तो अपने को अमृत वेला अपन जब बैठते हैं तो 3-4 श्रेष्ठ संकल्प देने हैं, जैसे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, ताकि अपने आत्मा ओरिजिनल हाई एनर्जी के स्टेट में आ जाए। दूसरा मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जैसा कोई भी आप संकल्प ले सकते हैं। मैं ब्रह्मा बाप समान ये सृष्टि का निर्माता हूं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जैसा अपन पहले तो अपने आप को देखना है, जैसा कि जैसे बाबा भी बोलते हैं कि अपने को तो आत्मा जो है ना अपने नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। नॉर्मल आंखों से क्यों नहीं देख सकते, मतलब अभी साकार मुरली में कुछ दिनों पहले आया था कि आत्मा जो बनी है वो सूक्ष्म चीजों से बनी हुई है, माना इस 5 तत्वों से बनी नहीं हुए। तो जैसे अपन पहले तो अपने को देखना है कि भ्रुकुटी में पहले तो आत्मा को देखना है, फिर जैसे अपन इस सूक्ष्म बनी हुई चीज है ना, तो इसको स्वरूप में पहले अपन अमृत वेला आप इसको जैसे देखेंगे तो अपन सीधा बाप से अटैच हो सकते हैं, क्यों बाप जो है वो भी 5 तत्वों से इन चीजों से बनी नहीं हुए। तो जैसे अपन इस सूक्ष्म शक्ति से है तो आत्मा का संबंध ही है परमात्मा के साथ। तो पहला तो अपने को देखना है, दूसरा स्वराज देखना है, फिर मन को बताना है कि मैं 1.5 घंटा बैठने वाला हूं। जैसा 20-25 मिनट के बाद कई बार लगता है कि मन थोड़ा योग में कमी आ रही है, तो वो मन ही गड़बड़ करता है, हिलाने डुलाने की कोशिश करता है मन ने। तो मन को बताना है कि भाई मैं अभी 3:30 बजे बैठा हूं, 5 बजे तक बैठने वाला हूं, बीच में हिलना डुलना नहीं है। और बुद्ध बताना है उसको, फिर उसको भी लगेगा कि भाई कोई देख रहे मेरे को, मतलब डिटैच ऑब्जर्वर बाबा बोलते हैं ना, जैसे कि उसको बताना है। फिर मन तो आपका ही है, जैसा गुलजार दादी बोलते थे मन मेरा मन है तो आपको मन तो आपका मानेगा ही मानेगा। और बाबा ने भी बोला है कि अगर मालिक शक्तिशाली है और योग्य है तो मन तो मानेगा ही मानेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मन नहीं मान रहा है, अगर मन नहीं मान रहा है मतलब मालक शक्तिशाली और योग्य नहीं है, तो इस दो चीजों में फोकस करना है कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। बुद्धि को बताना है कि इमेज जो देखना है, बुद्धि दिव्य दृष्टि जो तीसरा नेत्र ओपन रहे बताना है। फिर संस्कार तो अपने अनादि, जैसे कल अपना वरदानता पवित्रता आपका आदि अनादि संस्कार है, तो संस्कार को अपने को इमर्ज करना है। फिर बाद में जैसे अपन पवित्रता लिए तो पवित्रता की किरणें आ रही है, फिर मेरे ब्रेन में सब जगह समा रही है। जैसे अपन आत्मा की लोकेशन भी देखा जाए तो ब्रुकिटी के बीच में, जैसा अपन पीनियल ग्लैंड बोलते हैं जस्ट उसके सामने है। पीनियल ग्लैंड माना ही कि जिससे मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, जिससे अपने को नींद आती है। और जस्ट उसके पीछे देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है। तो पिट्यूटरी, जैसा कि साइंस के भाषा में ये मानते हैं कि पीनियल ग्लैंड को वो लोग आत्मा मानते हैं, दे डोंट नो कि आत्मा मतलब रुकटी के बीच में है, पीनियल ग्लैंड के सामने है। तो जैसे अपन पवित्र, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, सुबह सुबह अमृत वेला आपने सम्मान ले लिया, उस स्थिति में बैठ गए, तो आपकी ऊर्जा होती है पहला पीनियल ग्लैंड में चली जाएगी। बाद में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आप सब बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसा थायरॉइड ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन कंट्रोल होता है, सेक्स हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, और बाद में अपना जो भी सात मेन हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके नीचे फिर हाइपोथैलेमस आता है। तो हाइपोथैलेमस में अपनी भूख लगना, भूख नहीं लगना, मन को अच्छा लगना, मन को अच्छा नहीं लगना, जैसा तीन हार्मोन्स है बॉडी में जो मन को अच्छा लगना नहीं लगना, एक तो डोपामाइन है, एक नॉरएपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन माना खुशी का हार्मोन है, जैसे आप योग अच्छा कर रहे हो मतलब सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, नशा चढ़ रहा है मतलब आपको। दूसरा डोपामाइन आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे जो अल्कोहलिक है कोई, उसको नशा चढ़ता है तो वो डोपामाइन रिलीज होता है, वो फिर अपने आप उस नशे में चला जाता है। तो जैसे अपन परम पवित्र आत्मा हो तो क्या होगा, जैसा पीनियल ग्लैंड के सामने आपके आत्मा है, तो जैसे उसके आत्मा पवित्रता की पहला पीनियल ग्लैंड हो गए, तीनों ग्लैंड को किरणें जैसे उसके मिल गए तो अपने आप बॉडी में फैलते रहेंगे। जैसा सात जगह कंट्रोल होता है पिट्यूटरी से, तो अपने आप कंट्रोल होता रहेगा। फिर बाद में तो अपने को जैसा पवित्र आत्मा सूक्ष्म शरीर में पवित्रता की किरणें निकल रही है सब तरफ से, फिर बाद में आप चले गए शरीर से, फिर पृथ्वी के ऊपर चले गए, फिर सूक्ष्म वतन में चले गए, फिर बाप दादा के सामने खड़े, बाप दादा के हाथों में हाथ दे दिया, फिर वहां से सूक्ष्म शरीर से आत्मा निकल गए, निकल के परम धाम में पहुंच गए। तो अपन ने जैसा एक तो ठंडा शावर किया था, और अब डेढ़ घंटे में बाबा के नीचे जैसा आपने पवित्रता लिया, पवित्रता का संपूर्ण बाबा से शक्ति लेनी है डेढ़ घंटे में। ऐसा शक्ति लेना है कि उस दिन आपको उस दिन क्या परमानेंट पवित्रता आपके स्वरूप में आ जाए। अगर पूरा पवित्रता आपके मतलब नहीं आ रही, तो कम से कम आपके एक दिन तो उस पूरा स्वरूप में रहे, एक दिन आप उस गुण में आपको धोखा नहीं कहे। और जैसे दूसरा और एक शक्ति जैसा परखने की आपने 20 दिन शक्ति का लिया, तो उस दिन भी आपको डेढ़ घंटा पूरा से बाबा के नीचे एकदम शावर जैसा आपको डेढ़ घंटा वहीं रहना है। तो पवित्रता रह लिया तो बीच बीच में जैसा एक घंटा अपन सोमान की प्रैक्टिस करते हैं, तो पवित्रता का उसमें बीच बीच में अपने को रिवाइज करना है, और ऐसा स्वरूप बने कि रात में अपन जब देखते अपना चार्ट तो पवित्रता में अपने को पूरा उस दिन चार्ट अपना टारगेट रखना है कि 100% रहे। तो अपने को ये तो पहला ये करना है कि सात जो अपने मेन गुण है उसमें अपन परफेक्ट हो जाए, डेली एक लेके अपने को सुबह लेके, फिर शाम को आप इसी गुण का जैसा अपन नुमाशाम योग करते हैं, तो नुमाशाम योग में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे आप बाप के नीचे बैठ गए और मैं पवित्रता का गुण ले लिया, तो पवित्रता का गुण से ही अपने को जैसे पहले तो दादी ने भी बताया, गुलजार दादी ने, कि पहले तो अपन जब नुमाशाम बैठते तो आत्माओं को आपको सकाश देनी होती है, बाद में आपको पांच तत्वों को सकाश देनी होती है। तो चाहे आप परमधाम में बैठ जाए, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो जाए, तो अपने को उसी दिन बाप दादा से वो पवित्रता की शक्ति लेके पहले 10 मिनट आपको पहले तो खुद और शक्ति लेना है, फिर आपको एक 10 मिनट तो आपको आत्माओं को शक्ति देनी है। जैसा अपन एक घंटे का टारगेट रखे 6:30 to 7:30 इवनिंग में, तो अपने को आत्माओं को 10-15 मिनट देता है, और पांच पांच तत्वों को अपने को 10 मिनट शक्ति देनी है पवित्रता की, ताकि वो गुण अपने को समा जाए और उसका अपन स्वरूप बन जाए। तो अपने को ये टारगेट भी रहेगा, तो बीच बीच में मन का जो धोखा देना होता है वो भी नहीं होगा आपको, और आपका समय भी जल्दी बीत जाएगा। फिर आप इसमें ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसा आप पवित्रता दे रहे हो, जैसा आप आत्माओं को सब आपसे बाप दादा से किरणें निकल के आपसे किरणें आके सब आत्माओं में जैसे चली जा रही है, तो आत्मा देवता बनते जा रही है, पवित्रता का गुण उनमें चला जा रहा है। ये अपने को प्रैक्टिस करना है। जिस दिन शांति का ले लिया वो सब शांति स्वरूप बन रहे, शांति के देवता बन रहे। फिर 10 मिनट आपको पृथ्वी को पवित्रता की किरणें देना है, अपने को पृथ्वी को ऐसे इमेजिन करना है कि सतयुग बन रहा है। बनता तो बाबा की किरणों से ही बनता है, चाहे बच्चे निमित्त होकर सकाश देते हैं, लेकिन बनता तो अपने को 10 मिनट में देखना है कि बाबा की किरणें निकल के पृथ्वी में जा रही है और पृथ्वी एकदम सतयुग पवित्र हो रही है। तो सब अपने को उस दिन ये 10 मिनट में ये इमेजिन करना है, 5 मिनट तो अपन किरणें दे दे और नेक्स्ट में अपने को इमेजिन करना है कि पृथ्वी जैसा कि एक सतयुगी बनती जा रही है उसका इमेज आपको क्रिएट करना है। बाद में जैसा पानी हो गया, जस्ट पानी को दे रहे तो पानी को भी आपका सतयुगी पानी बन गया, आपको जो हलचल करता है, अभी सुनामी वगैरह जो आती है कुछ नहीं, सब बंद हो रहा है, आपको ये देखना है। तीसरा जो वायु में है पवित्रता जा रही है, तो कोरोना अपने आप स्टॉप हो रहा है। और जो वायु है ना, जो सतयुगी वायु होता है वो सतयुगी वायरस, मतलब वो 5 गुणों अपने 10 मिनट आप ये भी कर सकते हैं। और 5 तत्वों को भी जैसा कि वायु हो गया, सतयुग में सब कन्वर्ट हो रहा है, वो तो सब बाबा के सकाश से ही हो रहा है ना। आप सब 100 साल में आप देखा जाए तो बाबा से सकाश किरणों से सब जो सतयुग बन रहा है वहीं से बन रहा है, चाहे बच्चे निमित्त बने हैं। तो ये हो गया। और अपने को बीच में मन के कंट्रोल करने के लिए ये भी जरूरी है कि आप ये करते रहे, जैसे कि समझदार, बाबा बोलते कि समझ अलग है और समझदार बनना अलग है। समझ मानना, जब आप ऐसे कोई संगठन में बैठे हो, किसी ने कोई गलत बात कर दी, उसको आप समझ लिए कि ये बात गलत है, तो उसका ज्ञान होना भी जरूरी है, लेकिन उसको समाना नहीं है, समाना भी नहीं है और उसको समेट देना है वहां पे। नेक्स्ट आपने मन में भी नहीं रहे वो बात, और किसी के सामने अपन वर्णन भी नहीं करे। और जो समा लेता है, समेट लेता है, सबके सामने वर्णन खुद के मन में भी नहीं रखता है और किसी के सामने वर्णन भी नहीं करता है, बाप दादा को भी नहीं बताता है, तो उसको अपन समझदार कहेंगे। तो अपने को समझदार बन के रहना है। समझ मतलब जितना अपन समझदार बनते रहेंगे तो अपने योग की स्थिति अच्छी रहेगी। और दूसरा ये है कि आपका नुमा शाम योग अगर अच्छा करना है तो आपका शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ चिंतन बहुत जरूरी है। अब जैसा शुभ भावना का मीनिंग ही है कि श्रेष्ठ संकल्प, जैसे अपन समान के संकल्प रहते हैं, तो इसी से अपन शुभ भावना, जैसे दिन भर अपन रहे कि समान में रहे तो आपका नुमा शाम का योग अच्छा रहेगा। अगर श्रेष्ठ संकल्प में रहे तो नहीं है तो फिर योग अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा है कि अब शुभ चिंतक का मीनिंग क्या है, शुभ संकल्प तो हो गया, चिंतक का शुभ कामना का मीनिंग क्या है। अब शुभ कामना का मीनिंग यही है कि अगर संगठन में कोई बातें हो गई तो उस बात को तो भूलना ही है, बट जो बात कर रहा है उसके प्रति कामना करनी है अच्छी, कि आत्मा एक गुण इसका गुण चला जाए, मतलब ये आत्मा भी शुभ भावना संकल्प करे और सब उस वातावरण के प्रति भी उस बात का जो भाव है उस भाव को ही बदल देना है। तो ये कामना करना, किसी की अच्छी कामना करना, तो शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ चिंतक। शुभ चिंतक माना कि जैसा स्वचिंतन और अपन शुभ चिंतन दोनों मिला के शुभ चिंतक, माना स्वचिंतन में और जो शुभ चिंतन में रहती है स्वचिंतन। तो जैसे शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ चिंतन दिन में आपने आपको प्रयोग करते रहेंगे तो आपका नुमा शाम का योग अच्छा रहेगा। और जैसा और दूसरे मर्यादा की बात करें तो सुबह जैसा मुरली सुनना है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, तो मुरली सुनते समय अपन एक भी कर सकते हैं कि जैसा अपन बाबा के पास चले गए और बाबा को बुला लिया, बाप दादा को, फिर और जो भी मुरली सुनाते हैं निमित्त है उनको यही समझना है कि बाप दादा अपने को सुना रहे। तो अपने एक घंटा जब बाप दादा को अपन सामने लेके बिठाते हैं तो अपने को नींद नहीं आना, उबासी आना और मन इधर उधर जाना, फिर ये नहीं होगा अपने को मुरली के एक घंटे के क्लास में। फिर दिन में तो जैसा ब्रह्मा बाबा दिन में अपने को बनना है तो कर्मयोगी का बीच बीच में अपने को प्रैक्टिस करना है। ब्रह्मा बाबा जैसे संपन्न बने, संपूर्ण बने, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा तो नहीं किया कि कभी भी छोड़ के, मतलब एक भी दिन नहीं चढ़ा, 2 दिन भी छुट्टी नहीं ली, अपन जैसा हिसाब देखा जाए। तो कर्मयोगी का मीनिंग ही है कि कर्म करते करते बीच में योग का भी बैलेंस रहे। जैसे बाप दादा बोलते हैं कि जैसे बाप और दादा एक दूसरे में समाये हुए, ऐसा कर्म और योग दूसरे में समाये हुए, कर्म अलग नहीं हो और योग अलग नहीं हो। जैसे कि मैं आत्मा इस शरीर से करावनहार हूँ, कर रहे मेरी इंद्रियों से मैं कर्म करती जा रही हूँ, इसकी ये भी निशानी है कि जो कर्मयोगी होगा दिन में जो ज्यादा काम करेगा तो भी इसको ये नहीं लगेगा कि उसने कुछ काम किया है, उसकी हल्कीपन की स्टेज रहेगी, उसको कुछ भारी नहीं लगेगा कि आज अपन ने इतना काम कर लिया है, जो भारीपन का अनुभव होता है ना। जैसा लौकिक में भी अपन कर्म करते हैं तो सब कर्म को ही सब कुछ मानते हो, बीच में योग नहीं रहता है, तो उससे क्या अपन 2-3 घंटा कोई काम कर ले उसके बाद अपने को लगता है कि आत्मा की एनर्जी कम हो गई। तो आत्मा की एनर्जी, जैसा कर्म और योग आपका बीच में बैलेंस है तो आपको इतना हल्का लगेगा और आपकी एनर्जी भी बीच में कम नहीं होगी। और दूसरा यह है कि अपन कर्मयोगी, कर्मयोगी का जो कर्मयोग करता है उसकी ये भी निशानी है कि जो भी अपन कार्य करते रहते हैं तो अपना कार्य की जो कार्य का जो भी है वो अपने मन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़े, अपने मन के हल्केपन का कार्य के ऊपर प्रभाव पड़े ताकि अपन कुछ बोझ नहीं फील नहीं कर सके। तो बीच बीच में कर्मयोगी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे बाबा ने बोला है कि दिन के लिए मर्यादा है, सभी अपने आप चलती रहे, तो अपने को साक्षी, एक तो साक्षी दृष्टा और एक तो ट्रस्टी। अब साक्षी दृष्टा का मीनिंग यही है कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर माना अपने आप से आप, मतलब जैसा आपका मन गड़बड़ कर रहा है तो आप बस उसको देखते जाइए, आपको रिएक्शन नहीं करना है। साक्षी दृष्टा का मीनिंग ये भी है कि नो रिएक्शन, साक्षी दृष्टा इज इक्वल टू आपको रिएक्ट नहीं करना है। जैसे किसी दिन आप, किसी दिन क्या रोज ही समझो आपका योग अच्छा लगा तो उसके लिए भी अपने को रिएक्ट नहीं करना है। जैसे बाबा को देखिए, बाबा कोई चीज को रिएक्ट नहीं करते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने रिएक्ट तो नहीं किया, माना एनर्जी तो लॉस नहीं हो। 5000 में कभी भी रिएक्ट, 5000 सालों में आप देखता जाए तो बाबा कभी रिएक्ट नहीं करते। तो साक्षी दृष्टा माना यही है, आपका अगर मन भी कुछ गड़बड़ तो उसको बस देखते जाए। आप 2 मिनट आप ये भी विधि कर सकते कि मन में कुछ गड़बड़ है तो उसको बस देखते जाना है 2 मिनट, वो अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे कोई गुस्सा भी कर रहा आदमी को, आपको रेस्पॉन्स नहीं देना है, उसको बस देखते जाना है तो 5 मिनट के बाद वो चुप हो जाएंगे। और जैसा अपने बुद्धि भी जो है उसको बस देखते जाना है, अपने संस्कार भी जो है, तो संस्कार में अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना है। पहला तो आप इमर्ज कर ले कि अपने कौन से संस्कार है। संस्कार तो जैसा साइंस में भी अपन बोलते हैं कि 21 दिन में बनता है, तो बाबा ने भी बोला है कोई एक शक्ति आप यूज करो 15-20 दिन तो संस्कार बन जाएगी। तो संस्कार जैसा कि एक लूप ब्रेन में बन गया, वो अचानक वो जैसा सिचुएशन आने पर वो सामने आ जाता है। तो अपने को मन बुद्धि में जैसा अपने को संस्कार कोई नया बनाना है तो पुराने संस्कार को, अपने को पुराने संस्कार के बारे में अपने को सोचना नहीं, कोई नया मतलब नया संस्कार उसमें लेके आना है तो पुराना संस्कार अपने आप दब जाएगा। जैसा आत्मा में आप देखा जाए तो आत्मा है ही क्या, आप सत्युग त्रेतायुग जैसा कोई एक चीज है, उसके 4-5 लेयर है। आप सत्युग त्रेतायुग को देख ले तो जो अपने दिव्य है बाबा जो बोलते हैं उसको इमर्ज करो, जो सब तो गुण आत्मा में ही है, और द्वापर और कलयुग के भी आप गुण में है तो आत्मा में ही है, उसको बस इमर्ज करना होता है अपने को। तो आपने अब सत्युग त्रेतायुग जैसे हो गए वो गुण इमर्ज हो गए, द्वापर और त्रेता जैसे चालू हो गए वो पुराने वाले गुण इमर्ज हो जाते हैं। तो बाप अभी क्या बोलते हैं, संगम पर अपने को जो गुण है वो इमर्ज करते रहना है। इसलिए बाबा ने भी बोला है कि अपना एम जो है, और एक बाबा ने ये भी विधि बताई कि जैसे अपने को बीच बीच में जैसे सुबह भी देखते रहते कोई, जैसे झुटका खाना, अमृत वेला ये हो गया, तो बाबा ने उसके लिए बोला है कि एक तो अपने आप को जैसे विश्व राज्य अधिकारी समझो, जैसे सत्युग में आप राजा हो, सब आपके सामने प्रजा ही है और आप राजा जैसे कहाँ पे जा रहे हो, तो राजा ने अगर उबासी दी तो क्या होगा, सामने प्रजा कैसे देखेगी आपको। तो अपने को ये इमेजिन करना है, जिस समय अपन बाबा के सामने बैठते हैं ना तो बाबा अपने को उबासी आ रही है, तो अपने को ये इमेजिन करना है कि मैं सत्युग का विश्व महाराजन हूँ और मेरे को सब प्रजा देख रही है। जैसे मैं खुद उबासी दे दूं इधर उधर चला जाऊं तो प्रजा क्या सोचेगी नहीं, जैसे नहीं तो अपने आप अकेले हो रूम में भी आपको उबासी आ रही है कुछ ऐसे कि टाइम मिला सो रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, तब भी आपने को बाबा ने बोला है कि आप विश्व की स्टेज सब 700-800 करोड़ आत्माएं आपके देख रही है, तो उसके सामने आप ये गुण कर रहे तो फिर अपने को थोड़ा सा अपन अलर्ट रहेंगे। किसके लिए नींद? हाँ, ये तो अपन भोजन पे अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी तो अपने को समझ लेना है ना, विश्व महाराजन आप समझ रहे हो तो कैसे उबासी आएगी आपके सामने। जैसे प्रजा कड़ी है 10,000, जैसे आप जा रहे हो, जैसे बाहुबली में दिखाया, जैसे 10-20,000 प्रजा आपके सामने खड़ी है, तो आप सोच लिए प्रजा के सामने कोई उबासी देगा क्या नहीं नहीं मतलब नहीं, आपको अलर्ट रहना है ना, इतना अलर्ट रहने के लिए आप डिफरेंट, एक तो ये बस विधि है, डिफरेंट डिफरेंट आप विधि बना सकते हैं। वो तो आप बाबा के अगर अलर्ट है तो आपको नींद तो नहीं आएगी, बट बाबा ने ये भी बोला है को अपने को मतलब शरीर को जितना है उतना नींद भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसा नींद आपने बिल्कुल कम कर लिया तो आपकी बुद्धि भारी हो जाएगी अमृत वेले पे, तो अपने को बुद्धि को भारी नहीं करना है। दिन में भी जैसे आप देखो योग क्यों नहीं लगेगा, एक तो मन भारी हो गया, दूसरा बुद्धि की लाइन एक तो क्लीन नहीं, क्लियर नहीं, क्लीन क्लियर माना एकदम कचरा तो नहीं होना चाहिए, दूसरा तो आप देखिए तो बुद्धि भी भारी होना चाहिए। जब बुद्धि भारी जब होती है आपकी नींद बिल्कुल कम होगी। जैसे किसी मानो किसी शरीर सब अपने अपने शरीर से किसी को 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, किसी को 4 घंटे में। बाबा ने तो बोला है कि योगियों की नींद जैसे उनसे आधी रहनी चाहिए। बस बस अपने शरीर अनुसार इतना नींद तो होनी चाहिए कि अपनी बुद्धि सुबह भारी नहीं। अगर बुद्धि सुबह भारी हो रही है मतलब आप शरीर को पूरा आराम नहीं मिला है, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। धोखा मतलब सुबह फिर आपने आपसे मतलब इतना तो फ्रेश रहना है कि अपने आप को भाई ऐसा नहीं कि वो 3 ही घंटा सो रहा है तो मेरे को 3, मतलब बाहर अपने को देखना नहीं बाहर क्या हो रहा है। और दूसरा तो ये हो गया, और दूसरा के मर्यादा में जैसे बाबा ने बोला कि एक तो कि भोजन की मर्यादा, जैसे फिर भोजन का आता है तो बाबा ने बोला है कि अपने को शुद्ध जो ब्राह्मण आत्मा है उनके हाथ से भोजन खाना है। जैसा अपन मम्मा का डे था तो उसी दिन किसी ने ग्रुप में डाला था कि मम्मा की विशेषताएं डाले थे, 52 विशेषताएं, तो ऐसे ही पढ़ रहे थे हम, तो उसमें एक विशेषता थी कि मम्मा की, कि मम्मा भोजन के प्रति सदा अनासक्त रहते थे। मतलब भोजन क्या है कैसे बनाए कुछ नहीं देखते थे, जैसे आज नमक कम है, आज सब्जी में ये नहीं है ये नहीं है, आज मीठा ज्यादा है, कुछ नहीं, वो प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेते। तो अपने को भी ब्रह्मा भोजन प्रसाद समझ के स्वीकार करना है, उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करनी कि ऐसा नहीं बनाता, ऐसा नहीं ऐसा बनाता, किसी के सामने कमेंट नहीं करनी। अगर आपको नहीं खाना है तो नहीं खाइए, जैसा किसी को शुगर है मीठा नहीं खाना है नहीं खाना है, बट ये नहीं बोलना है कि अपने, जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि अपने इसमें बहुत ज्यादा मीठा बनता है, जो भी है वो भी मतलब नहीं, ब्रह्मा भोजन का अनादर है, वो भी आदर नहीं है, तो उनको फॉलो करना है ना। मतलब आपको जो भी खाना है अनासक्त वृत्ति से, और ब्रह्मा वही है कि मम्मा पूरा भोजन होते समय एक किसी से एक भी बात नहीं करते थे, तो अपने को भी वही है कि मिनिमम बातें कम से कम करें। अपना जब आदत है तो भी धीरे धीरे अपने को ये टारगेट रखना है कि बिल्कुल भोजन होते बातें बिल्कुल अपने को करनी नहीं, और कभी भी अगर अपन बोल रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है ब्रह्मा भोजन में उसका अनादर कर रहे। और ये भी है कि दूसरा भोजन के बारे में किया जाए तो भोजन अपने को ऐसा खाना है कि कम से कम अपने को अमृत वेला और नुमाशा में उसका असर नहीं रहना है। माना भोजन जैसे आपने ज्यादा समझो दोपहर में कुछ तली हुई खा लिए तो उसका असर रहेगा शाम के योग में, तो अपना ये टारगेट रहना है कि भोजन ऐसा करना है कि सुबह और शाम में उसका असर नहीं है, कम से कम सुबह 1-1.5 घंटा और शाम को 1 घंटा तो उसका असर नहीं रहे। बाकी भोजन करने के सबके तरीके मतलब सबके बॉडी के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी को 5 चपाती में पेट भरता है, किसी को 2 चपाती में, तो अपन सबके लिए एक ही टारगेट नहीं दे सकते। आज मेडिकली भी देखा जाए कि भाई तेरे को यही खाना है, नहीं नहीं उसके बॉडी को आपको खुद से खुद इसमें मास्टर बनना है भोजन के लिए, कि समझना है कि भाई मेरे बॉडी को ये चाहिए मेरे बॉडी को ये। पर बस योगी के लिए यही है कि कम से कम ज्यादा स्पाइसी नहीं, तला हुआ नहीं चाहिए, और जो अपन मम्मा ने बोला वो अपने को फॉलो करना है। वड़ा पाव तो अब खाना है, अपन मना तो नहीं कर सकते, बस जो भी खाना है उसका असर आपने बोला है कि ये टारगेट ये 2 टाइम है तो अपने शरीर के ऊपर उसका टारगेट नहीं रहना है। और जैसा कुछ और मर्यादा, और एक चीज भी जरूरी है कि दिन में अपने को डर भी रहना चाहिए, तो डर किस चीज का रहना चाहिए, जैसा संपूर्ण बनने का डर रहना चाहिए। धर्मराज को जो सजाए बोले ना बाप ने कि आपने को आपको वीडियो दिखाऊंगा हर एक कर्म ने आपने कब कब किया, तो जैसे दादी जानकी का उदाहरण एक दिन पढ़ रहा था मैं किताब, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब सब बच्चों को बाबा ने सेवा के लिए भेज रहे थे 1954-55 अराउंड, तो दादी जानकी 6 महीना सेवा के लिए गए नहीं थे, वो बस यहाँ बैठे थे और 6 महीना योग किया था। बाबा बोले कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, कि बाबा मेरे को सजा नहीं खानी है। मतलब उनको ये लगा था कि पहला योग में इतना करना है कि पुराने सब अपने धुल जाए। बाबा बोले कि आप तो अष्टरत्न हो, आप तो ट्रिब्यूनल में बैठने वाले हो, फिर समझ के 6 महीने के बाद दादी को भेजा था सेवा करने के लिए। तो अपने को दिन में ये डर होना चाहिए कि संपूर्ण और संपूर्ण कहां तक बन रहे, सजा खा तो नहीं रहे, मतलब ये डर होना भी जरूरी है, तो ये अपन मर्यादा के ऊपर चल सकेंगे। और कभी भी कोई गलती हो जाए तो उसी समय बाबा को अपने को बताना है, रात तक बताएंगे, माना तो आपकी 10 गलतियां हो तो रात में आपको याद नहीं रहेगी। अब जैसा आप देख के चार्ट आपको रात में लिखना है, सब बातें याद नहीं आती, तो जैसा एक घंटे में तो आपको टारगेट रखना है, और बीच में इससे अच्छा है कि आप एक घंटे के बीच में सब बता दो, जैसा कुछ गड़बड़ हो गई तो उसी समय बाबा को आपको बताना है। और जैसा नाइट में जो आपको अमृत वेला अगर फ्रेश करना है तो आपका लास्ट दिन में सब आपने को एक्यूरेट, मतलब बाबा के श्रीमत अनुसार ही कल का दिन गया हुआ है, नहीं तो फिर अमृत वेला सही नहीं होगा। फिर आपकी रात की जो नींद है, जो रात का चार्ट लिखने का तरीका है, तो बाबा ने तो बोला है कि ब्रह्मा बाबा तो सब अपने अधिकारियों का मतलब ये लगाते थे, जैसा मम्मा जो थे उस समय भी सबका जो 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 गलती हो गई तो रात में अपने ये करते, तो कचहरी लगाते थे, दरबार लगाते थे, तो अपने को भी दरबार लगाना है कि मन को, जैसे आप जैसे मन को अपने को ये बोलना है कि भाई मन को सामने खड़ा करना है कि भाई दिन में तूने ये क्यों गलती की, और उसका निवारण भी आप ही दे दो। मन को बताना है कि तुमने ये गलती की तो उसका निवारण भी आपको ही देना है। तो उसको जैसा जज सामने खड़ा करता है ना, कोई गलती होगी किसको, तो अपने को उसको दो से पांच मिनट खड़ा करना है उसको, फिर सामने बाद में बुद्धि को लेके आना है, फिर बाद में संस्कार को लेके आना है, ये भी विधि होगी। नहीं तो दूसरा विधि, जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि जैसे गुलजार दादी बोलते थे कि कोई भी गलती हो गई तो पहले तो बाबा को बताना है, फिर बाबा से शक्ति लेना है कि कल ये गलती नहीं होगी, और दृढ़ निश्चय करना है, फिर बाबा के याद में सो जाना है, फिर चार्ट तो अपने को लिखना ही है, फिर अपने को मतलब विधि करते रहना है, अपने को जिस विधि से मतलब रात को नींद अच्छी आ जाए वही विधि आपको रेगुलर में करना है। मतलब ये नहीं कि किसी, ये दो विधि तो आपको फॉलो ही करनी है, फिर आप भी कोई विधि कर रहे हो ताकि आपको रात में कुछ हो ना जाए, गड़बड़ हो ना जाए, उस हिसाब से आपको देखना है। और जैसा अलौकिक मर्यादा में ये भी आती है कि कोई ब्रह्म कुमार और कुमारी अकेले घूम नहीं सकते, मतलब ये भी जरूरी है, अकेले व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करते, ज़्यादा देर बात भी नहीं कर सकते, चलो कोई सेवा के लिए संबंध संपर्क में आना है, सबके साथ बैठना है, ब्राह्मण परिवार में है तो प्यार रहता है वो तो निभाना ही है। फिर जैसे अपन ने लास्ट ईयर में भी देखा तो कई सारे ग्रुप में मैं था, तो जैसे कोई अपने हेड है ग्रुप के वगैरह, वो दीदी वगैरह वो भी जैसा कि कोरोना के बारे में न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब न्यूज़ डाल रहे हैं, अपने को न्यूज़ नहीं डालनी है कि यहाँ पे ये हो गया कोरोना से इतने लोग मरे, तो ग्रुप में सभी के लिए क्या मतलब क्या जाएगा, अपनी स्थिति में हलचल पैदा हो सकती है, तो उसके लिए भी अपन निमित्त बन सकते हैं, तो ये भी अपने लॉ के अंडर आता है। जैसे लास्ट ईयर हमने कई सारे ग्रुप में ही डिस्कशन चल रहा है कि इस न्यूज़ में ये हो गया, बाबा ने तो बोला है कि अपने को डिस्कशन उसके बारे में करना ही नहीं है, तो उसके लिए आपने भी कहीं लास्ट क्लासेस में अपन ने देखा था कि जैसे बीच बीच में अपन एक घंटा ये भी कर सकते कि बाबा 5000 साल क्या करते, उसके लिए एक घंटे में आप पूरा देखिए कि 5000 साल बाबा क्या करते, और अपना यज्ञ की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में खो जाओ, तो अपने को मतलब जैसे अपन ने लास्ट टाइम अपन ने भी देखा था हिस्ट्री में खो जाएंगे तो आप प्रेजेंट में ये बातें सब अपने ऊपर असर नहीं करेगी, तो ये भी अपने को विशेष निमित्त और ध्यान करना है। ठीक है, ओम शांति। Love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow. Whoa, whoa, love you more than I can say. Whoa, oh, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Whoa, whoa, love you more than I can say. Don't you know I need you so? Tell me please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Whoa, oh, yeah, yeah. Love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow. Whoa, whoa, love you more than I can say.
Don't you know I need you so? Tell me, please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Whoa, whoa, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Whoa, whoa, love you more than I can say.